तीसरा हुक्म देखेगा माँ बाप के बाद, अब एक जनरल फॉर्म पे बात की जा रही है, वजील कुर्बा, कराबत वाले, रिश्तेदार, सिला रहमी इसको कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। कुर्बा से क्या पता चलता है? कुर्ब क्या है? कराबत। क्या ये सिर्फ नानी की होती है, खाला की होती है, या ये मामू होते हैं करीब के? अमूमन कुछ औरतें अपने बच्चों को अगर करीब करेंगी भी ना, तो नानी, खाला, नाना और मामू, बहुत हुए तो मवानी भी अच्छी लगेगी, और दादा, दादी, फूफी और फुला फुला, छोड़ो वो तो दुश्मन है, उन्होंने तो माँ को नहीं कभी खुश रखा था, तो वो इस बच्ची को कहाँ खुश रखेंगे। कभी अपने बच्चों को किसी रिश्तेदार से दूर ना करें। इवन शौहर बीवी की लड़ाई हो जाए ना, तो माँ अपने बच्चे को उसके बाप के खिलाफ ना करे, और बाप अपनी माँ के खिलाफ ना करे, वरना वो बच्चा नफरतों में पलेगा और इस तरह की उसकी जिंदगी में अधूरापन आ जाएगा। वो खुद अपनी इन चीजों को महसूस नहीं कर पाएगा किस तरीके से कराबतदारियों को तोड़ा। आज आप जरा पूछिए रिश्तेदारियों के हालात, क्या माजी में खाला के बच्चे और फुफ्फो के बच्चे या अपने भाइयों के बच्चे या फलां, उसमें मोहब्बत ज्यादा थी आज ज्यादा है? आज तकल्लुफ ज्यादा है, लंबा दस्तरखान तो आप आज बिछाएंगे, लेकिन वो मोहब्बत नहीं रही। तो हमेशा याद रखिए कि रिश्तेदार का पल्ला भारी ही होता है। इनको सदका देने का भी ज्यादा अजर है, इनका ख्याल रखने का भी अजर ज्यादा है। नबी सल्लम से एक शख्स ने पूछा कि खाला का क्या हुक्म है, तो कहा कि खाला के मंजलतुका उम्मुक, तेरी माँ के बराबर है। आप कहते हैं आज माँ ना रहे ना किसी बच्चे की, तो अडॉप्शन का मसला आएगा, तो शरण पहले वो बच्चा खाला को पेश किया जाएगा कि तुम इसको पाल लो। बाप क्या है? चचा के साथ। आपने फरमाया कि सिनवान, सिनवान ऐसे आगे हम पढ़ेंगे कुरान में वो लफ्ज आएगा, ऐसा दरख्त जो नीचे से एक और ऊपर से दो हो जाए। फरमाया कि चचा जो है वो बाप का सिनवान है। आज तो नफरतें और बुग़्ज़ और जो इनको हमने दुश्मन बनाकर पेश किया, अल्लाह की बना। और याद रखिए कि आज एक रिश्ता रह गया अंकल का और एक आंटी का। नॉर्वे का मैंने देखा खानदानी सिस्टम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है माशाल्लाह, हर साल दो दो चक्कर तो पाकिस्तान के आपके लग ही जाते हैं। मैंने अमेरिका में ऐसी ऐसी स्टेट्स घूम के देखी हैं कि वल्लाह ही बच्चों को नहीं पता होता कि उनके कितने खालाएं और उनके बच्चे हैं या क्या हैं। करीब बहुत पता है तो ग्रैंड माँ का पता है या ग्रैंड बाप का पता है, बहुत कम। जब 8-8 साल जाते ही नहीं है लोग, तो फिर फोन पे, और अब तो फोन के सिलसिले आम हो गए, पहले तो इतना आम भी नहीं था फोन। तो रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए कॉल से, फेल से, और अगर हम रिश्तेदारों को काटेंगे तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हल जजाल एहसान इल्ल एहसान, नेकी का बदला नेकी है और बुराई का बदला फिर बुराई है। कैसे अच्छे रहे? अब सवाल पैदा होता है, अपने लिए क्वेश्चन लिखिए कि हम रिश्तेदारों के साथ कैसे अच्छे रहे, क्योंकि ये देखिए सारी आयतें अब इंसानी मामलात की हैं, क्योंकि आगे वल यतामा वल मसाकीन की बात है। यतीम कहते हैं वो जिसका बाप ना रहे, बलूगत से पहले। जानवरों में यतीम वो होता है जिसकी माँ मर जाए, क्योंकि जानवरों में नस्ल माओ से चलती है। और यतम के लफ्ज़ में क्या था? कटना। दो मानी है यतीम लफ्ज़ के, या तामीम कटना। यतीम होते हैं ना, वो कट ही जाते हैं। बहन भाई जिंदा हो तो उनके बच्चों को लोग प्यार भी करते हैं, मोहब्बत से तोहफे भी देंगे। भाई बहन चला जाए और उसके बच्चे हैं तो तरस खा के तो कुछ दे दें, मोहब्बत कम ही देखी है मैंने। मोहब्बत भी माँ बाप के साथ ही मिलती है। इसी तरह दूसरा मानी होता है देर, ताखीर, क्योंकि यतीम को नेमतें देर से ही मिलती हैं। जो सबसे बच खुच गई चीज कहना जाके इसको दे दो, तो सवाल पैदा होता है कि इंसान क्या करे, इंसानी मामलात में क्या रवैये इख्तियार किए जाएं। तो सबसे पहले आप देखिए खैर ख्वार हैं, बी सिंसियर, इंसाफ का मामला कीजिए। कुराने पाक में तकरीबन 11 डिफरेंट प्लेसेस पे रिश्तेदारों के हकूक का तस्कर है। सिर्फ बनी इसराइल आयत 26 में भी है, वातिज़ल क़ुरबा हक्का हुवल मिस्कीन अब अबन सबील। फिर इसी तरह से बुखारी की रिवायत है कि ये सिला रहमी है, यानी अल्लाह ने अपने रहम से इसको जोड़ा। अल्लाह का नाम है ना रहमान और रहीम, उसी से फिर सिला रहमी है, रहमों को मिलाना। इब्ने माजा की रिवायत है कि मिस्कीन को सदका देना एक सदका है और रिश्तेदार को देंगे तो दो है, यानी आप $1 सदका देते हैं मिस्कीन को, और वो मिस्कीन अगर आपका रिश्तेदार है ना, तो आपको $2 देने का अजर मिलेगा। अब यहाँ कुछ गलत फहमियाँ भी होती हैं, उसका भी इजाला कीजिए। रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाए? क्योंकि जब एक्सट्रीम पे आते हैं ना, तो फिर हम कहते हैं अब रिश्तेदारियां जो हैं, गलत महफिलों में बुलाएं, गुनाह की बात है, हुक्म टूट रहे हैं, क्या करें जी, रिश्तेदार हैं, नाराज नहीं करेंगे। तो किन चीजों का? नंबर एक, ये हुस्ने सलूक अल्लाह की रजा के तहत हो, वो बात मानिए जिसे अल्लाह भी राजी हो, फिर बदले की तवक्को ना रखें। हम कहते हैं आज इनको ईदी दो जाके, ताकि कल ये हमें इससे ज्यादा देकर जाए, आज इनकी दावत पकाओ कल ये हमारी पकाएं, आज आप इनको तोहफा दो ताकि हज से आके ये हमें तोहफे दें, तो ये सिला रहमी नहीं है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है, इस पे बहुत दिल खट्टे होते हैं, कि ये ज्यादती करें तुम इनको माफ करो, ये तुमसे कटें तुम इनसे जुड़ो, ये तुम्हें महरूम करें तुम इनको अता करो। असल सिला रहमी भी यही है। देखिए, अच्छे को तो सब अच्छे, आप नॉर्वे में रहते हैं, आपके दो चार दोस्त साथी इधर उधर होंगे, 5 साल 10 साल से एक साथ रह रहे हैं, कोई हमसायों में बैठे हुए हैं, दोस्ती तो होती है, आप एक हाथ से अच्छे होते हैं, अगला दूसरे हाथ से भी अच्छा होता है। रिश्तेदार के साथ अच्छा होना क्या है, कि वो आपसे बुरा मामला करे आप अच्छे करें, और सिला रहमी है ही ये कि जो आपसे बुरा करे आप उससे अच्छा करें। है कोई आपका रिश्तेदार ऐसा जो आपकी बुराइयां करता है? तो मुबारक हो, अल्लाह का शुक्र कीजिए। हर एक के रिश्तेदार होते हैं जो उनकी बुराइयां करते हैं, अल्लाह का तोहफा है ऐसे रिश्तेदार जो आपको नेकियों का मौका देते हैं। और रिश्तेदारी जुड़ती कैसे है, आप देखिए ना, हर चीज के जोड़ने का एक तरीका होता है ना, तो आप देखिए कि एहसास के साथ रिश्तेदारी जुड़ती कैसे, हुस्ने सलूक से। आप अच्छा सलूक करके देखें, किल विद काइंडनेस, नफरतों का जवाब मोहब्बतों से दीजिए, बेगानगी के जवाब में अपनाइयत दिखाइए, और रिश्तेदारी टूटती कैसे, और साथ साथ अपना मुहासबा भी तो कीजिए ना, कि आपका रिश्तेदारों के साथ क्या ताल्लुक है। आज इतना मारूफ हो गया ये जुमला, अपनों से बेगाने अच्छे, जी बेगाने ज्यादा हमें अच्छे लग रहे हैं, अपने अच्छे नहीं है। हालांकि रिश्तेदारी का मामला क्या है, कैसे टूटती है, बदगुमानियों से, रिश्तों की हिफाजत ना करने से, किसी के खुशी गम में शरीक ना होने से टूट जाती है। अल्लाह अकबर। और जो यतीम की बात हुई, तो कमसिन बच्चा, और यतीम वो होता है जिसके बाप दादाओं में, जैसे दादा है चचा है, उसमें कोई कमाने वाला ना हो, अगर बाप ना रहे और चचा है तो वो बच्चा यतीम नहीं होता। जैसे नबी सल्लम के बाद आपको आपके दादा ने, दादा के बाद आपके चचा ने पाला, तो वो अहकामात फिर उसी तरह से लागू होते हैं। फिर आप देखिए कि इतनी ज्यादा हदीसें आगे सूरत निसा में, तो आपको बहुत ज्यादा टॉपिक मिलेगा यतीमों का, लेकिन यहाँ एक हदीस नोट कर लें। साहल बिन साद से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला इस तरह होंगे जन्नत में, यूं। बास कहते हैं मुराद ये है कि जैसे इन दो उंगलियों के बीच में कोई नहीं, और बास कहते हैं ये उंगली छोटी है तो ये बड़ी है, यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम है, तो उससे थोड़ा ही नीचे मुकाम होगा उसका जिसने किसी यतीम को पाला। बेहतरीन घर वो है जहां यतीम को मत देखा जाए, ये बुखारी की रिवायत थी। अगला देखिए, वल मसाकीना, और मसाकीन, पहले तो आप इसका रूट लिख लें क्योंकि आप गलती खाएंगे। अरबी जुबान में आमतौर पर अभी तक आपने भी जितने पढ़े हैं ना, तीन रूट आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लफ्ज के चार होते हैं, जिनके तीन हो उनको कहते हैं सुलासी, सुलासी, लेकिन चार हो तो उसको कहते हैं रुबाई। तो मिस्कीन लफ्ज के चार रूट हैं, मीम सीन काफ नून। पीछे मैंने आपको थोड़ी सी इसकी खोल के चीज बताई थी, मस्कनत में क्या है, मसका और प्लस सकना, सकना सुकून, मस्कन ठहर जाने को कहते हैं ना, और मसक कहते हैं पकड़ने को। मिस्कीन वो शख्स होता है जिस पे वक्त रुक गया, इंग्लिश में लोग कहते हैं हैंड टू माउथ, वक्त ही नहीं गुजरा, महीना इतना लंबा हो गया, कब पहली आएगी तो पे मिलेगी, ये हालात, इंतजार हो रहा है, हाय आटा खत्म होने वाला है लेकिन अभी दिन बहुत सारे हैं, ऐसे लोग मिस्कीन। अच्छा, मिस्कीन ये नहीं है कि गरीब हो, हमेशा गुर्बत से मिस्कीन ही नहीं होती, बाज दफा इंसान जिस्मानी तौर पे माजूर हो जाता है। अब एक टैक्सी ड्राइवर था, सारी जिंदगी टैक्सी चलाई, नजर कमजोर हो रही है, जिस्मानी बीमारी लग गई, अब टैक्सी नहीं चला सकता, तो वो मिस्कीन है। खेत था, फसल लगी, आग लग गई, पूरे साल की फसल तबाह हो गई, मकरूज हो गया। तो मिस्कीनी का तलक बहुत डिफरेंट एंगल से है। मजे की बात है कि वल मसाकीन के बाद ये नहीं कहा मिन हम, उनमें से, यानी मुसलमानों में। यहां एक जुमला नोट करें, हर इंसान जो गरीब है या मिस्कीन है उसकी मदद करें। ज़रूरी नहीं कि मुसलमान मिस्कीनों को ढूंढें, बेवाओं और मिस्कीनों के लिए मदद करना अल्लाह के यहाँ बहुत अजर है। अल्लाह के नबी की एक रिवायत है बुखारी की, खुलासा है उसका कि बेवाओं और मिस्कीनों के लिए कोशिश करने वाला और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है या इस शख्स की तरह जो दिन में रोज़े रखता और रात को इबादत करता है। सवाल पैदा होता है कि यतीमों मिस्कीनों के साथ अच्छा मामला करना मुश्किल क्यों होता है? इम्तिहान होता है बहुत बड़ा। वजह यह है कि इसके आगे से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती, कोई मोटिवेशनल फोर्स नहीं होती कि करेंगे तो जवाब में मिलेगा। आमतौर पे तो लेन देन पे दुनिया चलती है। कमज़ोर आदमी के साथ सिर्फ वो बंदा एहसान कर सकता है जो कि अल्लाह से अजर की उम्मीद रखेगा। और जब हुस्ने सलूक का शऊर आता है, अल्लाह के लिए बंदा करता है, तो उसको ये बात अच्छी लगती है। इसके बाद आप देखिए कि इस आयत की बहुत ही खूबसूरत बात, बड़ा खूबसूरत हुक्म, वो क्या है? वकूलु लिन्नासि हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात करो। अब आप देखिए कि कूलू कहो, लिन्नासि लोगों से, हुस्ना हुसीन, ये जो लफ्ज है ना लिन्नास, ये लाम की वजह से इसके दो मानी है। पहला मानी क्या है? कूलू ली, ली किसको कहते हैं? वास्ते, ली लिल्ला। टू, यानी इंग्लिश में समझाऊंगी तो आसान लगेगा, फिर आप उसको उर्दू में चेंज करें। कूलु लिन्नास में ली जो है ना, ली प्लस अन्नास है, ली टू पीपल और अबाउट पीपल। क्या पता चला? लिन्नास का एक मानी क्या है? जब लोगों से बात करो तो अच्छी बात करो, तुम्हारा स्पीकिंग स्टाइल बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, टॉन्टिंग ना हो, तनकीद ना हो, तुम दूसरे की बेइज्जती ना करो। और जब इस ली को के बारे में बात करेंगे अबाउट, तो मुराद है कि लोगों की हीपते ना करो, दूसरों के सामने उसके बुरे तस्करे ना करो। मेरा लिए सबसे मुश्किल हुक्म अभी तक की बातों में से यही है। इसी के ऊपर एक इंसान परेशान है। लोगों से अच्छी बात कहो, अल्लाह के बारे में बात करो, और लोगों को जब बात कहो तो अच्छी बात कहो। कैसे करें? इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन। नंबर एक, ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म दो। लोगों को अच्छी बात कही जाए तो क्या कही जाए? कि लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, ठीक है, लोगों को अल्लाह ताला से जोड़, क्योंकि कुरान पाक में आगे आता है वमन अहसन कौला मिम्मन दाअ इलल्लाह वअमिला सालिहन, सूरत हामीम सजदा की आयत है, कि उससे अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, ठीक है। फिर इसी में तबलीग, लोगों की बुराइयों पर उनको अच्छे तरीके से समझाना। हम सोचते हैं कूलुल नास ही हुस्ना, कह के लोगों की तारीफें करो, आप कितने अच्छे हैं, आप सो नाइस, आप बहुत अच्छे, और उनकी बुराइयां दूसरों के सामने छेड़ो और अच्छी खूबियां उनके सामने करो। हालांकि कूलुल नास ही हुस्ना में दूसरा दर्जा क्या है? मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी भी मुमकिन तरीके से आपको जरूर एहसास दिलाऊं। अगर मैं को मेरी बला से, मुझे क्या इनका नुकसान है, होता जाए, तो ये लिनास ही हुस्ना नहीं है। तड़प पैदा करें। हम क्या करते हैं? दूसरे की खूबियां उसके सामने और उसकी बुराइयां लोगों के सामने। कभी कोई बंदा, बहुत दफा मौके मिलते रहते हैं, कभी कोई स्टूडेंट, कभी कोई साथी, जहां मिले रहें जाए आए, तो कोई तारीफ करे ना, तो मैं एक जुमला उनको अक्सर कह देती हूँ। मैं कहती हूँ अगर कोई अच्छी बात हमारी लगती है ना, तो वो दूसरों से कहें, और आप यहाँ आए और आपको यहाँ कोई बुरी बात लगी ना, तो वो हमें बताएं। लोग अमूमन इससे उलट करते हैं। तो हुस्ना में क्या हो गया कि उनकी बुराइयां दूसरों से ना करो, उनसे करो, और उनकी खूबी उनके सामने करने की बजाय दूसरे के सामने करो। वजह क्या है? कि इससे फायदा होगा। देखिए ना, मेरी बुराई आप मुझे बताएंगे, मैं इसलाह कर लूंगी, और दूसरे को आप मेरी बुराई बताएंगे तो वो क्या करेगा? एक तो आपने अपनी गंदगी दूसरे के दिल में भी डाल दी, दो से तीन होंगे, एक ग्रुप बन जाएगा, सारे ही आप कहेंगे खराब हो गया, तो कैसे प्लेग की तरह वो बीमारी बढ़ती जाएगी। फिर इसी तरह से अगर आप इसमें तीसरा देखिए, तो कलाम करने का अंदाज, नरमी, अदब, डिसेंसी हो, अच्छे अखलाक के साथ बात कीजिए, शाउटिंग का अंदाज ना हो, चीखने चिल्लाने का अंदाज ना हो, गुस्से वाले बात ना हो। फिर इसी तरह आप देखिए, चूंकि लफ्ज लिन्नास है ना सब लोगों को, तो फिर इसमें एक इसका खूबसूरत तलाक, तबलीग के दौरान बात कैसे करो, इस माइक पे आके सबको काफिर को जहन्नमी कह दो, मुशरिक कह दो, काफिर कह दो, मुनाफिक समझो, नहीं, इसके बारे में आपको सुनाती हैं एक रिवायत। तलहा बिन उमर कहते हैं कि मैंने इमाम तफसीर हदीस अता यानी अता नाम के एक मुफसिर थे उनसे कहा कि आपके पास तो फासिद अकीदे वाले लोग भी जमा रहते हैं यानी जिनके अकीदे ठीक नहीं है, मगर मेरे मिजाज में तेजी है, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं मैं तो इनको सख्त बातें कह देता हूँ। अता ने फरमाया ऐसा ना करो क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कूलुल नास हुस्ना, इसमें तो यहूदी और नसरानी भी शामिल है तो मुसलमान ख्वाह कैसा ही क्यों ना हो वो क्यों ना इसमें दाखिल होगा। क्या पता चला ये बात अब फिर दीनदारों पे तनकीद है। आज आप देखिए इतनी सच्ची बात होती है 100% सच्ची बात होती है पर कहने का अंदाज इतना बेहुदा इतना शर्मिंदा करने वाला होता है कि जिसमें वो बुराई होगी ना वो कहेगा कि मैंने तो एक बुराई की थी ना पर इसने जिस अंदाज से मुझे टोका है ये तो मुझे और भी नहीं अच्छी लगेगी। मतलब देखिए यहां दाग पड़ जाए टेबल पे और कोई गंदा कपड़ा लाकर उसको साफ करेगा ना तो पहले थोड़ा सा ना तो पहले फिर पूरे टेबल पे फैल जाएगा। बुराई कभी बुराई से नहीं मिटती। दीन वालों को दीन की बात करते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा गैरतमंद नहीं होना चाहिए। मैं ऐसी किसी का क्लिप सुन रही थी तो बात वो 200% सच कह रहे थे। बेहयाई की बात थी कि मखलूत मजलिसें कैसे होती हैं ना शादियों ब्याहों में जो मर्द अपनी बीवियों को या बहु बेटियों को स्टेज पे बिठा के और ये इस तरह का मौजू था उनका ना। किसी ने मुझे भेजा मैंने सुना बात उनकी 200% दुरुस्त थी बट उसमें थोड़ा सा आगे जाकर उन्होंने कहा कि मैं आज अपनी आवाज़ को और सख्त करूंगा आज मैं और गुस्सा कर। फिर उसमें उन्होंने इतना को गुस्सा दिखाया कि मैं अगर किसी को वो आगे करना भी चाहती तो मैंने नहीं की। वजह क्योंकि बदतमीजी की हद तक गुस्सा था। नंगेपन की बातें करने शुरू हो गए कि तुम नंगी अपनी औरतें ले जाओ तो बेहतर है लेकिन जिस तरह इस तरह ले जाते हो बात सच होती है। देखिए कहते हैं कि कड़वी गोली लड्डू में डाल के दो। आप कैप्सूल खाते हैं तो आप उसका कवर उतार के खाएं तो आप खा नहीं सकते। क्यों एक कैप्सूल को भी प्लास्टिक में डालकर देते हैं कि इसकी दवा अंदर चली जाए ऊपर इसका खलक न छिल जाए। तो तबलीग के दौरान और खास तौर पर फिर दूसरे मसलक के बारे में ये तो बदतरीन किस्म की तबलीग होगी। एक दीनदार दूसरे दीनदार को काफिर कह दे जहन्नमी कह दे मुशरिक कह दे ये दुरुस्त नहीं है। तो तबलीग के दौरान जब अल्लाह आपको मौका दे बच्चों से इवन आप अपने बच्चों को उठते ही शुरू हो जाएं जहन्नमी हो काफिर हो मुनाफिक हो आग में जाओगे उठ जाओ तो वो उठेंगे। वो तो कहेंगे अम्मा अब सोएगी तो मैं उठूंगा। इतनी गालियां सुन के सुबह का आगाज होगा तो मैं क्यों उठूं। आप उनके दिल में अल्लाह का प्यार क्यों नहीं डालते कि वो आपको उठाएं कि मामा मैं उठ गया हूं अब मुझे मस्जिद छोड़ो। तो हमेशा याद रखिए तबलीग वाले को जितना सब्र करना पड़ता है मेरा आला दुनिया में कोई इतना सब्र नहीं कर सकता। वजह क्या है उसको हर चीज की बुराई तो दिख ही रही होती है और लोगों में वो होती हैं बातें। उसको तो वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक वो ऐनक मिल जाती है जिसमें से माइक्रो और मेगा वाला मामला है। छोटी चीजें बड़ी दिखती हैं सुंडियां सुसरियां पड़ी हैं दूसरे खा रहे हैं उसको दिख रही हैं वो कैसे खुश रहे। बट फिर भी सुकून के साथ अच्छे तरीके से बात करें और ये अच्छी बात होती है। अबू ज़र से रिवायत है नबी सल्लम ने फरमाया कि नेकी की छोटी से छोटी बात को हकीर ना जानो और अपने मुसलमान भाई को मुस्कुराते चेहरे से मिलो। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। फिर इसी तरह हज़रत अनस से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ना तो गाली देते थे ना बदगो थे ना बदखू थे ना लानत मलामत करते थे। अगर हम में से किसी से नाराज होते अब ये भी नोट करें क्या अल्लाह के नबी सल्लम नाराज होते थे। होना चाहिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हंसते ही रहो मुस्कुराते ही रहो बदतमीजी बच्चे करें हंसते रहो और जो भी लोग गलत काम करें को नहीं चूंकि मेरा अखलाक बड़ा अच्छा है। नहीं अल्लाह के नबी बहुत नाराज होते थे बट आपकी नाराजगी आपकी खामोशी से दिखती थी। साहबा कहते हैं आप जब नाराज होते तो हमें कहते इसे क्या हो गया या इसकी पेशानी खाक आलू दो। नाम नहीं लेते थे लेकिन उसको एहसास दिला देते थे। ये बुखारी की रिवायत है। इसी तरह हजरत अदी कहते हैं कि नबी सल्लम ने जहन्नुम का जिक्र किया और इससे पनाह मांगी चेहरे से एराज और नागवारी का इजहार किया फिर जहन्नुम का जिक्र किया उससे पनाह मांगी और चेहरे पर एराज था। शोभा कहते हैं दो मरतबा आपने जहन्नुम से पनाह मांगने के सिलसिले में तो कोई शक नहीं फिर आपने फरमाया कि जहन्नुम की आग से बचो चाहे आधी खजूर से सदका करो और अगर ये भी मुयस्सर ना हो तो अच्छी बात ही कर दो। कौलु मारूफुन सदका अच्छी बात करना सदका ये भी बुखारी की रिवायत है। फिर इसी तरह कौले हसन में एक चीज क्या लिखी कई तफासीर में लोगों को इल्म सिखाना। इनमें इस्लाम को फैलाना, स्माइली फेस से रहना, फ्रेश दिखना, बशाशत का एहसास करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हत्ता कि गैर मुस्लिमों से कलाम करते हुए अल्लाह ताला ने क्या कहा, वला तुजादिलु अहलल किताबी इल्ला बिल्लती हिय आसन, अहले किताब से भी बात करो तो ज़रा ठंडी बात करो। सूरह अनकबूत की आयत 46 है ये। तो खुलासा क्या है, कुलुल नास हुस्ना के बुराई के जवाब में भलाई करो, फेवरेटिज्म का शिकार ना हो। अब रैंडम चंद बातें नोट करा रही हूँ आपको। क्या हो कि तुम बुर्दबार रहो, दरगुजर करो, मुआफ़ करो, किसी को हकीर ना समझो, मुस्कुरा से बात करो, और सबसे बड़ी बात है किसी की खूबी का इतराफ़ भी करो। बहुत सारे लोग दूसरे की खूबी का इतराफ़ नहीं कर सकते, क्यों? फिर सर पे चढ़ जाएंगे और इसी वजह से फिर हमें दूसरे लोग पसंद ही नहीं करते। कहते हैं आप हमारी खूबी का इतराफ़ ही नहीं कर रहे और आप हमेशा हमारी गलत चीज़ों का इतराफ़ करते हैं। तो आप याद रखिए कि एक बैलेंस रवैये के साथ रहना बड़ी बात है। और ज़रा सा आप अपने पाकिस्तान और इंडिया के, इंडिया का तो मुझे नहीं पता इसलिए मुझे कहने का हक नहीं, ज़रा वहाँ के कल्चर को भी देखिए कि मासियों से हम कैसे मिलते हैं। कूल उल इन्नास हुस्ना मासियों के साथ होता? आपके पास इधर मेड्स का रिवाज नहीं है नॉर्वे में, इसलिए मेरी बात शायद आपके लिए अपडेटेड ना होगी, लेकिन अमेरिका में हर मेड आती है, आएंगी, हेलो हाउ यू डूइंग, ओके यू वांट ड्रिंक, हेल्प योर सेल्फ। मासी होती है ना वो भी बेचारी, लेकिन गोरी होती है, तो उसको कहते हैं आओ बैठो खा लो, फ्रिज में से जो भी लेना है खा लेना, बड़े प्यार से हेलो बेलो करके। जब वो जाती है शुक्र करते हैं, इतना वक्त हो गया इंग्लिश बोल बोल के थक गए थे इससे काम कराते हुए। अच्छा हमारी मासियाँ आती हैं, पहले तो आते ही डांट पड़ेगी, देर से आई हो, कल काम नहीं करके गई थी। यानी कूल उल इन्नास हुस्ना के मासियों के साथ होना चाहिए, कमज़ोरों से होना चाहिए, जिनको हम ज़कात देते हैं उनसे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बराबर के बंदे के साथ तो बंदा बड़े आराम से कर लेता है क्योंकि वो भी आप जैसा ही है। सबसे मुश्किल हुस्ना की बात कब होती है, जब मुकाबिल आपके सामने जो है वो आपसे रवैये में छोटा है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा अखलाक अच्छा कर दे, दीन सिखाते हुए भी और दुनिया में। अब देखिए इसके बाद, यानी एक दो तीन चार पाँच छः हुक्मों के बाद सातवें नंबर पर आ रहा है वाकीमुस्सलाम, और नमाज कायम करो। हम होते तो क्या सोचते अगर आयत की तरतीब हमारे ख्याल में क्यों नहीं थी, ला ताबुदून इल्लल्लाह वाकीमुस्सलाता वातुज़्ज़काता वबिलवालिदैन एहसाना। सवाल पैदा होता है नमाज का तज़किरा इतनी देर से क्यों आया, फिर आगे बात करेंगे नमाज कायम होती कैसे। जी देखिए नमाज के बाद जो असरात उसके दिखते हैं ना, पहले उसका तज़किरा किया गया, बिल्कुल सही। अच्छी नमाज होगी ना तो कुल उल इन्नास हुस्ना होगा, और ये भी पता चल गया कि अल्लाह सुबहान ताला ने लोगों से ताल्लुक और मस्जिदों में ताल्लुकात से बताया कि कौन कितना नमाजी है कितना नहीं है। अब देखते हैं अकीमुस्सला नमाज कायम करो क्या मतलब है। ये क्यों नहीं कहा कि यतलून सलात यकराउन सलात पढ़ना, युअल्लिमून सलात नमाज का इल्म हासिल करो। यहाँ कायम करने की बात क्यों हुई, तो इसमें बहुत सारी बात है। सबसे पहली बात इसमें क्या है कि नमाज को आप वक्त की पाबंदी पे सही वजू के साथ, अरकान जो इसके नमाज है उनको पूरे तादील के साथ, किरत जो करें तरतील के साथ करें, खुशू और खुदू के साथ पढ़ें, तवज्जो कायम करके दिल लगाएं, यानी नमाज की अपनी कैफियत कायम करने वाली हो, भागती दौड़ती नमाजें ना हो। फिर दूसरी चीज इसमें क्या आती है कि नमाज दिल की हजूरी के साथ पढ़ो और उसका असर अपने कौलो फेल में दिखाओ। फिर अकीमुस्सलात में अल्लाह के लिए इखलास हो, और फिर यह है कि नमाज के वक्त पे उसकी हर चीज का ख्याल रखो, सुन्नतों फराइज का, बट जो असल मानी अकीमुस्सला का है, नमाज पढ़ने के बाद वो सोसाइटी बने के असर नजर आए। ऐसी सोसाइटीज क्रिएट करो कि जहां पता चले कि ये लोग नमाजी हैं, नमाज एक लिप सर्विस नहीं है। और यहां आपको एक और चीज भी पता चलती है कि तौरात में भी नमाज और ज़कात थी, ये कोई इस्लाम में नई चीज नहीं डल गई हम पे। वाकीमुस्सलात वातुज़्ज़का और ज़कात भी दो। और आप देखिए कि नमाज जो है ना ये दिल के जमाओ का नाम है, और ज़कात देना क्या है, उसका इजहार किस बात का, अल्लाह के मामले में इतनी सच्ची हो कि उसके कहने पे अपने माल में से जितना हिस्सा वो कहता है वो दे दूं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को भी ज़कात का हुक्म दिया, इन्होंने उसको ऐसे आज ख़त्म किया। आज आपको पूरी तौरात में कहीं ज़कात का हुक्म नहीं मिलेगा, बल्कि मुसलमानों पे कहते हैं ये क्या ज़्यादती है कि 100 पे 2.5% दे दो, हालांकि टैक्स आपसे 100 पे शायद 40 से 50% ले लेंगे, और पहले लेते हैं आपसे, फिर आपके घर में चेक आएगा। और इस्लाम किस पे ज़कात लेता है? पूरा साल एक दौलत आपके घर पड़ी रही, जेवर की सूरत में, माल की सूरत में, किसी प्रॉपर्टी की सूरत में, और वो वक्त से बढ़ रही है, कीमत उसकी बढ़ती जा रही है, 100 में से 2.5 निकाल के दे दो, क्या बड़ी बात है। और आप कहते हैं ज़कात नहीं चाहिए, तो वो चीज़ साल तक रखो ही ना अपने पास। लेकिन वही बात आती है ना कि इस्लाम की छोटी सी बात को बहुत बड़ा समझा जाता है और दूसरी चीज़ को मुश्किल समझा जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं अल्लाह ताला ने इनके मालों पर जो ज़कात ठहराई थी वो कैसे थी, आसमान से आग आती थी और वो ज़कात का माल उठा के ले जाती थी, जैसे कुर्बानी का तस्करा है, जिसकी कबूल हो जाती वो चली जाती, जिसकी ना होती वो रहने दी जाती। खुलासा क्या है, आपको सच बताएं ये सारी आयतें पढ़ के कुरान के हुक्म नहीं लग रहे, लेकिन ये हैं किनको, यहूद को। और अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ ना कि यहूद को है, तो खुद ही समझ लें कि ये नसारा को भी हैं, क्रिश्चियंस के भी हैं, क्योंकि सेम बाइबल ही दोनों को मिली थी। आगे जाके इस पे बात करेंगे, अभी टू मच हो जाएगा आपके लिए। सूरह आल इमरान के बिल्कुल शुरू में ये समझ आ जाएगा। हम बहुत शुरू से ये समझ आ रहे हैं ना कि तौरात और किताब है और इंजील कोई और किताब है, तो ये और किताबें नहीं है, एक ही किताब के दो डिफरेंट पार्ट कह लीजिए। तो लिहाजा इसको पढ़ के कम अज कम आपको तो ये खुशी होनी चाहिए कि अगर हम अल्लाह ना करे इस्लाम पे ना होते तो भी ये सारे काम तो करने पड़ते। क्या आज वेस्टर्न थॉट ये नहीं दी जा रही कि इस्लाम बहुत हार्ड रिलीजन है? हमारे बच्चों को कहते हैं ये क्या रोजे रखने, बहुत जुल्म है तुम पे, आप 5 दफा नमाज पढ़ोगे, मुंह धोना पड़ेगा। तो ये आयत किसकी है? ये मुसलमानों की आयत नहीं है। लिख लें इसके शुरू में ये तौरात की आयत है, रेफरेंस के तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान में पेश कर दी। तो लिहाजा हर दीन में ये चीजें रहती हैं। उसके बाद देखिए अब ये कितने हुक्म हुए थे, 8। किया क्या, हालांकि आगे दो आने हैं, लेकिन यहां क्या कहा, सुम मतवल्लई तुम, फिर तुम फिर गए। ऐसे नहीं लग रहा आपके सामने बैठ के आपको कह रहे तुम फिर गई हो। ये आयत किसके सामने रख के गई जा रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के यहूद को कहा जा रहा है तुम फिर गए, हालांकि वो तो नहीं फिरे थे, फिर तो उनके अबाउजदाद गए थे। तो ये जो तवल्लई तुम है ना, ये हाल है, किसी का हाल बयान करना। अल्लाह ताला ने माजी के यहूद की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के यहूद को इस तरह क्यों कही? क्योंकि बाप दादा के उस रवैये पे वो खुश भी थे और उसी तरह से वो करना चाह रहे थे। हाँ मगर इल्ला कलीलन, अच्छा तवल्लई को बस इतना अभी लिख लें, वल्ला यु वल्ली दो तरह से होता है, पीठ फेरना, ये जो बैक होती है ना हमारी पुश्त। अब यहां मैं आपके सामने बैठी ना, तो अगर मैं आपसे पूरा मुंह फेर के पीछे व्हाइट बोर्ड की तरफ मुंह कर लूं तो मैं आपसे मुंह फेर गई। एक लफ्ज होता है एराज, अरजा, मेरा चेहरा सामने था लेकिन ये मैंने या पूरा लेफ्ट पे कर लिया या मैंने राइट पे कर दिया, ठीक है। तो तवल्लई में क्या कि अपसाइड डाउन ही हो गई, सीधी चीज को आपने बिल्कुल उल्टी कर दिया। मुराद क्या है कि आपने अल्लाह के इन हुक्मों को नहीं माना, और ये किसी काम के करने के लिए है। मोरिदून के लफ्ज आते हैं आगे, वो भी इसी को देखेंगे कि वह अंतुम मोरिदून, और तुम मुंह फिरने वाले हो। मोरिद क्या है, इसम फाइल है, मतलब क्या है कि तुमने ये बातें करना अपनी आदत बना ली है। बस इतना से ही लिख लीजिए कि अल्लाह ने जो जो हुक्म तुमको दिया तुम्हारी तो आदत हो गई कि तुम उसको ना मानो। कैसे, यहां तवल्लई तुमसे क्या मुराद है? इब्ने अब्बास कहते हैं मतलब यह कि तुमने इन हुक्मों पर अमल छोड़ दिया, और दोबारा फिर मोरिदून क्यों आ गया? पहले देखिए, अब जो मैंने दोनों जुमले बोले हैं इसको दोबारा देखें, सुम्मा तवल्लई तुम, क्या हुआ, यहां से मुंह करके इधर मुड़ गए, और दूसरा कैन तुम मोरिदून, तो यहां से मुंह इधर कर दिया, फर्क है ना। तवल्लई तुम ज्यादा शिद्दत है, पूरा ही आपने एक 90 का एंगल बना के या बल्कि 180 के एंगल पे घूम गए। मोरिदून के 45 के एंगल पे घूमे, दोनों ही कैफियत की, मतलब क्या है, कुछ लोगों के सिवा तुम में से अक्सर ने या तो पूरे दीन को छोड़ दिया, तवल्लई तुम्हें अब ये भी लिख सकते हैं सारे ही हुक्म छोड़ दिए, और मोरिदून में क्या, कुछ को छोड़ा कुछ को मान लिया। क्यों, सवाल पैदा होता है, लोग शरीयत के बुनियादी अहकाम को क्यों नहीं मानते? नंबर एक, शरीयत के अहकाम ख्वाहिश नफ्स से टकराते हैं। नंबर दो, जहालत की जिंदगी को छोड़कर जिम्मेदारियों वाली जिंदगी को अपनाने की दावत देते हैं। और तीसरी बात है कि दुनियादारी छूट जाती है। क्या आज हम मुसलमानों का ये हाल नहीं है? किसको नहीं पता कुरान में नमाज का जिक्र है, रोजे का जिक्र है, हज का जिक्र है, शराब छोड़ दो, सूद छोड़ दो, फिर क्यों आज मोरे दून और आज क्यों तवल्लई तुम वाली कैफियत है? पहले बताइए है भी कि नहीं है ना? वजह क्या है? बहुत सारे लोग इल्म की कमी की वजह से दीन पे अमल नहीं छोड़ते बल्कि तकवा की कमी की वजह से। सामने जितने भी साथी बैठे हैं, मेरा आप सब के बारे में यही गुमान है कि लफ्ज नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पर्दा, फिल्में, गाने, ड्रामे, हम सब बचपन से इनकी अच्छी या बुरी बात सुनते आए ना। कोई नया लफ्ज़ तो नहीं मैंने बोला, फिर भी लोग अमल क्यों नहीं करते? चलिए हम बेहयाई की बात करते हैं, बेहयाई के लफ्ज़ को ज़रा सा ठंडा कर लेते हैं, मसलन बेपर्दगी की बात करते हैं। कितनी औरतें आप सिस्टर्स में से जो पर्दे की असल जानते हैं कि इस्लाम के क्या हुक्म है पर्दे के बारे में, औरत और मर्द की क्या लिमिट्स हैं? आप में से कितना का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में, वो हैंड रेस करें। जिनके हाथ नहीं खड़े हैं उनको शायद बिल्कुल ही फिर नए हैं, शायद ना उन्होंने कभी दौरे कुरान सुना, ना कभी कहीं कुरान पढ़ा, ना कहीं तारिक जमील साहब का पर्दे पे कोई दर्स सुना, ना आप लोगों ने कोई जुमे का खुतबा सुना। वरना मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी माहौल में पैदा होने लगी इतनी सी बच्ची को भी पता है पर्दा क्या होता है, मर्द और औरत की क्या लिमिट्स हैं। पता होने की हद तक 98% लोगों को पता है। अब उस सारी मालूमात पे अमल कितने परसेंट लोग करते हैं? असल सवाल ये है, हम इल्म की कमी की वजह से नहीं अमल छोड़ते, हम खौफजदा होते हैं लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, बातें। अब देखिए इस सबक में आपको दो लफ्ज दिखे हैं, अपना मुहासबा कीजिए, क्या मैं दीन के मामले में तवल्लई तुम पे हूं या इराद पे मोरे दून? दोनों में फर्क है। कुछ आधा दीन लेते हैं आधा छोड़ते हैं। अगली आयत ही बड़ी जबरदस्त आ रही है, लेकिन याद रखिएगा, सच्ची बात मैं कह दूं, अपने मालिक के ऊपर नजर रखते हुए आपको ये बात कहूंगी, अमन, सुकून और इत्मीनान पूरी इताअत में। आधा करना और आधा छोड़ना जो होता है ना, ये कीवी को भी जाया कर देता है। खैर, आगे वाली आयत में वैसे ही आपको ये मजमून समझ आने वाला है, इसलिए मुझे इस पर ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं।